शमशी से हमने आपकी मुलाकात करवा दी। और चलिए साहब, एक गीत की तरफ आपको लेके चलते हैं। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साज़ो आवाज़। बहुत शुक्रिया हमारे उन स्पॉन्सर्स का जो हमारा प्रोग्राम आप तक लेके जाते हैं। CIK टेलीकम्युनिकेशन से आज माजिद भाई ने बात ही नहीं कराई। टुडे इज़ फ्राइडे एंड द मैन इज़ टोटली टुन। और आपको पता ये टुन क्या होता है। हम एक गीत की तरफ आपको लेके चलते हैं। आप गीत को सुनिएगा।
बिल्कुल गीत है।
आई गॉट योर मैसेज। मैं भी डॉक्टर अदनान को लेके आती हूँ। बिल्कुल, ये भी रिसेंट की न्यूज़ है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान जा रही है। ज़ाहिर है इंडिया की बेइंतहा कोशिश है पाकिस्तान को ब्लॉक करने की इन गेम्स के सेक्टर में भी। किसी भी मुल्क की स्ट्रेटजीज हैं और ये इंडिया की एक स्ट्रेटजी हो सकती है एंड वी शुड नॉट माइंड इट। अमेरिका का प्रेसिडेंट वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिया। वी पाकिस्तानीज, हमने काम करना है इंटरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर है आप बताइए क्रिकेट की जो सूरत हाल रही है। अब देखिए, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड मैच था उसमें ये कहा गया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी ही नहीं, ड्रॉप कर देगी मैच को, एक पॉइंट जाता रहेगा, एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। मगर जब मैच हुआ तो इंडिया खेला ही ना पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल खेला था। हार जीत दोनों में से एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है। मगर इस वक्त श्रीलंका की टीम के बारे में अभी रिसेंटली ये BBC की न्यूज़ है कि मगर यकीनन इंडिया भरपूर कोशिश करेगा। पाकिस्तान की टीम को ये बैकलैश मिला तो है ना, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने ब्लॉक किया। और देखिए साहब, मुझे और आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में इल्म होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है, मेरा बेटा बल्कि मुझे भी सऊदी अरेबिया में भी जब थी तो मुझे कहने लगा कि मैं किसी बात पे कह रही थी कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें कोई सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली थी, कोई सिंसियर लीडरशिप नहीं मिली थी। और आई वॉज इन मक्का मौजमा और एक जगह पर मैं खड़ी हुई थी, लास्ट डे की मेरी बात है। तो देर वॉज समबडी From, I think he was from Jordan. और वो मुझे बल्कि कहने लगा उसको हमारा प्रेसिडेंट अयूब बहुत याद थे। और it was only कि जब JF Kennedy और जैकलिन कैनेडी जो थी ना वो पाकिस्तान गई थी, कितनी ज़बरदस्त उनकी विज़िट थी। और उसके बाद जितनी लीडरशिप आई, आपको पता ही है कि हमारे जो मसाइल रहे वो मेरे भी सामने हैं, आपके भी सामने हैं। हम कहने को अपने आप को जो भी कहें कह सकते हैं, मगर हमारी प्रॉब्लम्स तो हैं ना। और पाकिस्तान की लीडरशिप का ये अलमिया रहा कि हमने अपने मफादात के लिए काम किया, हमने मुल्क के मफाद के लिए काम नहीं किया। इंडिया ने पाकिस्तान को हमेशा, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉक करने की हर मुकाम पे कोशिश की। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम, इस वक्त की गवर्नमेंट का आज का बड़ा अच्छा फैसला था, जो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्राइम मिनिस्टर जो इंटरवीन करते थे, उस इंटरवेंशन को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। एंड इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। हमारी स्टील मिल वन ऑफ द बेस्ट मिल थी जो कि बहुत प्रॉफिट में थी, और फिर ये सिफारशी भर्तियों की वजह से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कितने ममालिक की एयरलाइंस को इसने सपोर्ट किया था, इस्टेब्लिश किया था। मैं बल्कि, मेरा बेटा मुझसे कल रिपोर्ट शेयर कर रहा था एंड आई कुड नॉट बिलीव इट। आपको पता है माजिद भाई कि पाकिस्तान ने जर्मनी को एक जमाने में एड दी थी। डू यू नो इट और नॉट?
आई नो इट।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनली जर्मनी को पैसे के साथ मदद दी थी। आज जर्मनी कहां खड़ा और हम कहां खड़े? किसका फुकदान है? हमारी लीडरशिप का फुकदान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पूरी दुनिया में कई ममालिक के बीच में एयरलाइंस को सेटअप किया था। यानी इतना ये एग्जाम्पलरी, मिसाली रोल मॉडल किस्म की एयरलाइन थी, और फिर हमारे लीडर्स ने, और किसने? मैंने और आपने, मेरे और आपके जैसे लोगों ने, जो हम इन लीडर्स की बहुत तारीफ करते हैं। हम फेवरेटिज्म क्यों फेवरेटिज्म करते हैं? इसलिए कि मैंने अपने बेटे को भर्ती करवाना है, इसलिए कि मैंने अपने भाई को भर्ती करवाना है। और जिसकी वजह से भट्टा बैठ गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, भट्टा बैठ गया पाकिस्तान स्टील मिल्स का। भट्टा बैठ गया हमारी क्रिकेट की टीम का, भट्टा बैठ गया हमारे हॉकी की टीम का। क्या कमाल की हमारी हॉकी की टीम थी, मगर हमारी पॉलिटिकल मदाखलत इतनी ज़्यादा हुई कि हमने अपने चचा मामा ताया बेटा भांजा भतीजा उन तमाम को भर्ती कराने की खातिर, नौकरियां लेके देने की खातिर अपनी बेहतरीन इदारों को तबाह करके रख दिया। गवर्नमेंट का आज का फैसला बहुत अच्छा है, जो कि क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से है, कि जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। चलिए साहब एक गीत की तरफ लेके चलते हैं, या टॉप ऑफ द
ये फिल्म जिस हम फिल्म की बात कर रहे थे, हम हीर मांझा, उसके गीत बहुत खूबसूरत गीत हैं उसके, और उसी में से एक गीत हमने आपके लिए चुना है। समाप्त फरमाइए हीर मांझा का एक गीत।
This November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca. Pakistan,
kabhi na bhoolo. मांगे मीठा कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है ये सब है इसके शौकी। राजधानी
स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
राजधानी
मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिसने तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट, ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल डे बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप।
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट,
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम,
टिकट फ्री पार्किंग फ्री। स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583।
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में, आमची मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में, कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में, जलेबी तलेगी चटोरी गली में, कपल का नर मटका चटोरी गली में।
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb lap lapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
Adi jinna mitona hove, sodi bina nahi ho jachta. ਸੋਡੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ।
ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਨ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भेजें एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल के थ्रू, क्योंकि इनके पास है रिलायबल सेफ और सिक्योर बैंकिंग चैनल्स। चाहें तो दूसरी फॉरेन करेंसी सेल और परचेस भी करें। फॉर फास्ट एंड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर थ्रू एबल एक्सप्रेस इंटरनेशनल कॉल एट 416-230-4444।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872।
और हर मंडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल।
बेटे की शादी की तारीख पक्की हो गई है और कोई शादी हॉल ही नहीं मिल रहा।
अच्छा देखते हैं।
मैंने तो अपने बेटे की शादी उसी हॉल में करानी है।
अरे भाई किस हॉल में?
वही हॉल जहां अहमद साहब के बेटे की शादी हुई थी, याद है? वेन्यू भी जबरदस्त था और खाना सबने कितना पसंद किया था।
अच्छा आप कैपिटल बैंक्वेट सेंटर की बात कर रही हैं?
हाँ हाँ, कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड पर। किसी भी तकरीब या कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एक ही नाम, कैपिटल बैंक्वेट सेंटर 6435 डिक्सी रोड इन मिसिसागा 9056700635 9056700635।
जी साहब, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हमारे फा मुजफ्फर आपके साथ हैं। मेरी कोशिश होगी कि डॉक्टर अद्दान को हम आपके साथ लेके आए। मायरा खान के बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ। इंडिया की और पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है फेडरल जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था ऑलरेडी और इंडिया का मीडिया इस वक्त प्रमोट कर रहा था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की वजारत खजाना की जानिब से इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाली इन खबरों की तरदीद आई। इंडिया ये कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इलाकाई तंजीम जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। हमारा जो पाकिस्तान का वजारत खजाना, उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए पाकिस्तानी रिपोर्ट को म्यूचुअल इवेल्यूएशन प्रोसीजर में शामिल किया गया है और ये पहले से तरीकाकार जो एक तयशुदा था उसके तहत हुआ है। पाकिस्तान को हर सेमाही अपनी कारकर्दगी बताना होती है। प्रेस रिलीज में एक बार फिर इंडियन मीडिया की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम को गलत करार दिया गया, इनकी तरदीद भी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के दारुलहकूमत में एशिया पैसिफिक ग्रुप के 5 रोज़ा इजलास का अख्ताम पर जारी किए गए ऐलामी के मुताबिक APG के इजलास में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक की कारकर्दगी का मुफसल जायज़ा लिया गया और इसकी तफसीलात अक्टूबर 2019 पर शाया की जाएंगी। अब इंडियन मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए ने खबर दी थी कि ये इजलास में जो APG जो पैसिफिक ग्रुप है उसने पाकिस्तानी रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही की है और उन्हें लाजमी कवायद की दी गई फहरिस्त के मुताबिक पूरा नहीं समझा। और जून में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान को तंबीह ज़रूर की गई थी कि वो अक्टूबर तक अपना एक्शन प्लान मुकम्मल कर ले वरना इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और यानी इसको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में माहौल कशीदा है, खून खराबे का खदशा है। टुडे फ्राइडे और आपको तो यह है कि जुमे की नमाज के बाद ये खून खराबा ज़्यादा हुआ है। वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने चंद रोज़ पहले मसला कश्मीर पर बंद कमरे में बातचीत की थी, एक बार फिर उन्हीं तवज्जो उसकी तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि अगर आज इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कोई किसी भी नौइयत का वाक़िया पेश आता है तो इंडिया यकीनन पॉइंट आउट करेगा पाकिस्तान में। हालांकि कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तो उन्हीं की वजह से ही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इंडियन मीडिया झूठा प्रोपेगंडा कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर को एक और ख़त भी लिखा है। इससे पहले पाकिस्तान ने 5 अगस्त से इंडिया की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे, ये 370 वो था कि कश्मीरियों के अलावा अदर इंडियंस कैन बाय लैंड इन दैट एरिया, उसमें ये कि ज़ाहिर है जो कश्मीरी हैं उनके हकूक ख़त्म किए जाएंगे और उनसे ज़मीनें ली जाएंगी और बाहर से आने वाले जिनको वो आबाद करना चाहते हैं इस इलाके में वो यहाँ पे आके ज़मीनें ले सकेंगे। बड़ी मखदूश सूरत हाल है, बड़ी मखदूश सूरत हाल है। माहिरा खान की भी फिल्म इस वक्त टोरंटो में है और शी इज़ अ नाइस एक्ट्रेस। मज़े की बात यह है कि माहिरा खान ने जब इंडियन फिल्म में काम किया था तो आप तमाम ने बहुत सराहा था, आपने उनकी पाकिस्तानी फिल्म भी ज़रूर देखिएगा और ज़ाहिर है उन्होंने इंडिया में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और अब पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान अभी तक मेकअप गर्ल नहीं बन सकी, यानी वो मेकअप के बगैर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। इन्होंने पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामा सीरियल हम सफ़र से शोहरत पाई थी और बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं। वो बहुत खुश, कभी बहुत खुश हो जाती हैं, कभी बहुत सदमे से दो चार होती हैं और पछतावे को अपने करीब फटकने नहीं देती, यानी इफ़ एंड बट्स उनकी लाइफ में नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि कभी किसी रोल को देखकर ऐसा लगा कि काश ये रोल मैंने किया होता तो उन्होंने कहा कि आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिल जाता है। मैंने कभी कोई ऐसा रोल नहीं देखा और कहा कि काश मैं ये करती, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो जिसके हक में है या जो जिसके हिस्से में है वो उसको मिल जाता है। माहिरा खान ने कहा कि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप कोई फिल्म देखते हैं सोचते हैं कि आप मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन ऐसे ख्यालात को एक सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं देती। उन्होंने कहा कि वो अगर एक ही तरह के किरदार करती तो उन पर तनकीद ही ना होती। उन्होंने कहा कि अगर वह हम सफ़र के बाद खिद जैसे किरदार करती और अच्छी लड़की बनकर दिखाती तो उन पर कोई तनकीद ना करता। अपनी नई फिल्म सुपरस्टार के बारे में उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म से लोगों के सामने कुछ साबित नहीं करना चाहती थी बल्कि अपने सामने अपने आप को साबित करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल नडर होकर ये फिल्म की है, मुझे सब ने मना किया था कि ये फिल्म ना करो लेकिन मैंने सोचा कि अगर नाकाम भी हो गई तो क्या हुआ, खैर होगी, सुपरस्टार इस वक्त टोरंटो में लगी हुई है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। मायरा खान ने कहा कि सुपरस्टार का स्क्रिप्ट 4 साल से उनके पास था और ये हाल हो गया कि मैं सोच रही थी अगर ये ना बनी तो मैं इसे डायरेक्ट करूँगी, यानी शी वॉज सो डेडिकेटेड टू डू इट। अपनी ज़िंदगी के बारे में मायरा खान ने कहा कि उनकी एक डार्क साइड भी है, यानी मेरा मेरी ज़िंदगी का एक तन्हाई पसंद हिस्सा भी है जो मैं महफूज रखती हूँ और मैं पोशीदा रखती हूँ। उन्होंने बताया कि मैं झूठ नहीं बोलती और इस वजह से मैं फंस भी जाती हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि घुल मिल जाने वाले इंसान हैं अदाकार और डायरेक्टर अदील हुसैन, जो इनके दोस्त भी हैं, हमेशा कहते थे कि हर कोई तुम्हारी मस्बत ख्याली और मुस्कुराहट के काबिल नहीं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका ताल्लुक मेरी शख्सियत से है। अपनी ज़िंदगी की परेशानी और ज़ख्मों के बारे में बात करते हुए मायरा खान ने कहा कि उन्होंने कभी अपने ज़ख्म खुद ठीक नहीं किए। मुझे ये इस साल एहसास हुआ जब मैं बहुत बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप किसी सदमे से गुजर रही हैं। आखिरकार मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि आप सदमे से निजात की एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, ये बहुत मददगार होती हैं, 2-3 एक्सरसाइज कीजिएगा आप सही हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी खुद सदमे का सामना नहीं किया। शो बिज़नेस इंडस्ट्री में आने से पहले अमेरिका में अपनी ज़िंदगी का जिक्र करते हुए मायरा ने बताया कि वो अमेरिका में फोम बेचा करती थी और $1,000 का एक फोम बेचने पर उन्हें $100 मिलते थे। फैशन के हवाले से बात करते हुए मायरा ने बताया कि इस मामले में काफ़ी सुस्त हैं, जब तक कोई मुझे कहे ना या पुश ना करे मैं सैलून भी नहीं जाती। मेरे मैनेजर और मेकअप आर्टिस्ट से पूछ लें, मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि ये है मायरा खान जो आज फटी हुई शलवार कमीज में आई हैं। उन्होंने 4 दिन से अपने बाल नहीं धोए, 2 दिन से खुद नहीं नहाई। ये सेट पर मेरे साथ बार बार हो जाता है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इश्यूज़ पर अपनी राय देते हुए मायरा खान ने कहा कि जब कोई चीज़ उन्हें तंग करती है तो वो बोलती हैं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उस पर बात नहीं करती, लेकिन कभी कभार उनके पास कहने के सिवा और कोई चारा भी नहीं होता। फिरदौस जमाल के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उनका बयान इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा लोगों को लगा। उन्होंने कहा कि मैंने वो सब कुछ कहा कि छोड़ो, हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब मैंने वो इंटरव्यू दोबारा देखा तो सोचा ये क्या कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हीरोइन नहीं हूँ कोई मसला नहीं, आपको लगता है मैं खूबसूरत नहीं कोई मसला नहीं, आपको लगता है कि मैं एक अच्छी अदाकारा नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन ये उम्र की जो बात है ना, बहुत बरसों से लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं इस पोस्टर में चाइल्ड हूँ। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास शिद्दत पसंद रवैया हमें नहीं रखना चाहिए। बस जी, मीरा जी के हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरा बहुत अरसे से बहुत सी बातें करती रहीं, वो नहीं जानती थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तमाम पिछले साल न्यू ईयर पार्टी में होने वाली मुलाकात में मीरा और उन्होंने काफ़ी वक्त साथ गुजारा, मामलात को बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत प्यारी बातें मुझसे कही उन्होंने, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जहाँ तुम खड़ी हो मैं वहाँ खड़ी थी, और ये सब लोग जो हैं इनमें से कोई साथ नहीं रहता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साहब, दुनिया वक्त के साथ बदलती है। और
वक्त की बात कर रही है तो आरफा जी पता नहीं कि ये वक्त कहाँ जा रहा है, क्योंकि
बहुत बुरा वक्त है माजिद भाई इस वक्त। अमेरिका और चाइना का मामला बड़ा सीरियस मामला है,
आज और ज्यादा सीरियस हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले खबर सुनाई थी कि चाइना जो है वो टैरिफ्स लगाएगा अमेरिका पे,
इसलिए कि ताइवान को अमेरिका ने ताइवान के साथ सदी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें F-17 है, और ज़ाहिर है ताइवान के साथ चाइना का अपना ताल्लुक चलता चला आ रहा है, और चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका उसको इस तरह से असला फराहम करे,
इंडिपेंडेंट करे।
और चाइना ने उसके बाद कहा है कि जितनी कंपनियां इस मामले में डील करेंगी हम उन पर टैरिफ लगाएंगे।
उसके जवाब में आज अभी लेटेस्ट अभी खबर जो है ये आपके सामने निकल रही है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम चाइना पे रिटेलिएटेड के तौर पे और जो है टैरिफ्स लगाएंगे।
एक टैरिफ 1 सितंबर से लगना था, ये मेरा ख्याल है,
उसके बाद
10% था, 15% उन्होंने कर दिया कि 10 की बजाय 15% ये टैरिफ बढ़ाएंगे।
अब चाइना पे टैक्स लगाया है उन्होंने और $250 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, और उसको टैक्स करेंगे वो 30% इंस्टेड ऑफ 25% स्टार्टिंग राइट नाउ October 1st से। और उन्होंने फिर ट्वीट किया कि $300 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना जिसपे 10% का टैक्स था, September 1st से, नेक्स्ट वीक September 1st से इस पर टैक्स जो है 15% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और इन दोनों की वॉर के बीच में जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत उसने आज इफेक्ट किया है,
मुतासर, बहुत मुतासर हुई। और मजे की बात ये जो पावल हैं इनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया था,
हाँ
2017 में अपॉइंट किया था। इस शख्स को चूज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं और आज उनकी और उनकी रिफ्ट इतनी बढ़ गई है कि पॉवेल कहते हैं
कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया ना, आज उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया है, और इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद इन्होंने तो नाम दिया है वो आई डोंट नो चाइना इज द एनिमी और हमारे अपने लोग हमारे एनिमी हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा, उसकी वजह से आज बताऊँ मैं आपको कि डाउ जोन्स जो थी वो 700 पॉइंट्स नीचे गिरी, और उसके बाद जो क्लोज हुई है वो 620 पॉइंट्स नीचे गिरी है आज। S&P 1.3% नीचे गिर के 215 पॉइंट्स उसने लूज़ किए हैं, 16,037 पे क्लोज हुई है। और ये तो दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ इट, और मैं समझता हूँ कि और उन्होंने अब जैसे बुश साहब ने कहा था ना कि आइदर यू आर विद मी और विद देम, यू नो आइदर यू आर विद मी और विद देम, ट्रंप साहब का भी एटीट्यूड ये हो रहा है कि भाई जो भी इनसे अमेरिकन कंपनीज जो चाइना से डील करेंगे फाइंड अल्टरनेटिव फीसेस, कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है चाइना से नहीं करना, किसी और से करना है कर लो। तो हम उन्होंने सारी अमेरिकन कंपनी से कहा है कि इससे चाइना से फौरी तौर पर,
इनकी ये फेडेक्स और ये तमाम कंपनियां भी, उन्होंने कहा है कि उनके साथ दी, उन्होंने बल्कि हर चीज
का एप्पल पे तो उन्होंने पहले ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया उस पर, तो अब और दूसरी कंपनीज पे भी उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनीज जो है अमेरिकन कंपनीज वो अगर चाइना से डील करना चाहती हैं तो भाई दे'ल हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात लेते हैं और आप में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
एशियन फूड सेंटर, इंडियन, कैनेडियन, साफ सुथरी ग्रोसरी देनाल।
कारकार विच मशहूर हो चुकिया एशियन फूड सेंटर हमेशा सस्ते रेट ते वधिया सेवावां देण लई वचनबद्ध है।
अपने एरिया विच पेंदे किसी भी स्टोर विच जाओगे तो जरूर बचत पाओगे।
वधेरी जानकारी लई एशियन फूड सेंटर दा इक्को इक नंबर याद रखो, 416-740-3262।
एशियन फूड सेंटर, 416-740-3262।
कैनेडियन इमिग्रेशन के कवानीन वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि आपकी इमिग्रेशन का केस माहिराना तरीके से अप्लाई किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और हमारी फर्म हर तरह के केसेस, चाहे वो स्किल्ड वर्कर हो या बिजनेस क्लास, फैमिली क्लास, स्पॉन्सरशिप हो या विजिटर वीजा, कामयाब तरीके से सबमिट करती है। हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हमारे लॉ ऑफिस में ऑस्बन बार्नवेल बैरिस्टर एंड सोलिसिटर हैं, जो डिपोर्टेशन रुकवाने और कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पेचीदा केसेस करने में 25 साल तजर्बा रखते हैं। आप मुझसे 9055130012 पर रابطہ कर सकते हैं।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ ऑयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज,
स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
मेसमराइज ऑप्टिकल, दूर या करीब की नजर कमजोर है। दुनिया के खूबसूरत रंगों को देखना, लिखना, पढ़ना, अपने बच्चों की पोरों, उनके बालों, उनके चेहरे को एंजॉय करना, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, बच्चों के लिए HD डिजिटल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, फ्री बाईफोकल प्रोग्रेसिव लेंसेज, फ्री ट्रांजिशन SV लेंसेज, 50% तक ऑफ। मेसमराइज ऑप्टिकल तमाम इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। 1780 मार्कम रोड, यूनिट B2, स्कारब्रो में, शॉपर्स ड्रग मार्ट वाले प्लाजा में। मेसमराइज ऑप्टिकल, अपनी नजर चेक करवाइए। 4163350786 3350786।
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल मॉर्गेज, रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आता है इनके। आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं। बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का अरेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन नाउ 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
रूबी ज्वेलर्स, खुशी के मौके पर गोल्ड और डायमंड की खरीदो फरोख्त में। 28 साल से रूबी ज्वेलर्स आपके फैमिली ज्वेलर्स। डायमंड इयर रिंग्स, बैंगल्स, डायमंड रिंग्स इन प्लैटिनम। साइज लेने से मेकिंग और डिलीवरी तक आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी। पाकिस्तान, दुबई, सिंगापुर, इंडिया। दिलकश डिजाइन, कंगना, बिंदिया, झूमर। 7080 एयरपोर्ट रोड, रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी में क्वालिटी के जामिन रूबी ज्वेलर्स। 9056778888 रूबी ज्वेलर्स।
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस के मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522-302-2522।
हेरा ट्रैवल, दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तमाम एयरलाइंस से डील करते हैं। IATA अप्रूव्ड, टोरंटो की सबसे पुरानी और काबिल एतमाद ट्रैवल एजेंसी। सस्ते और पक्के टिकट के लिए सफरी सहूलतों की यकीन दहानी, प्रोफेशनल सर्विस। हेरा ट्रैवल किसी भी रिटर्न प्राइस को बीट करेंगे। 416-255-5566
All Debt Solutions and Consulting Services 416-671-0577 Financial Problems? Stop worrying and start living debt-free life. Visit today to your convenient location, Toronto, Scarborough, Richmond Hills and Mississauga. Call now 416-671-0577. Live a happy debt-free life. All Debt Solutions and Consulting Services.
جی صاحب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ عظیم میاں صاحب اس وقت ہیں۔ مجھے ابھی بلکہ جنید آپ کی کال ملی تھی کہ دیکھیے صاحب، ہم تو انٹرنیشنل نیوز کے اوپر ہی بلیو کرتے ہیں۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ پاکستان پہنچے گی، فرائیڈے کا دن ہے، اور فرائیڈے کے حوالے سے ہی یہ نیوز بلکہ آئی ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی نے جمعے کو سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر سے فون پر بات کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے ون ڈے اور T20 سیریز کھیلی جائے گی، جس کے بعد ٹیسٹ سیریز ہوگی، اور یہ سیریز جو ہے ICC کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ احسان مانی نے کہا کہ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ان کوششوں کو سراہا ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کو پاکستان آ کر ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے سے صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لینے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ فرائیڈے کی بات چیت ہوئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، مگر آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں عظیم میاں صاحب سے۔ دنیا کی پالیٹکس کس طرف چل رہی ہے؟ آج وہ جو مسٹر پاول ہیں، ان کو 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سے نامزد کیا تھا، مگر آج وہ ویری ہوئے ہیں مسٹر پاول کے۔ यकीनन ये भी खबर है कश्मीर की क्या सूरत हाल चल रही है। अमेरिका ने एक दफा फिर से सालिस बनने की कोशिश किया। जैसे प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने आपसे बात की थी कि कश्मीर के बारे में सवाल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा में आए, अमेरिका में आए हुए थे, तो ये सबसे पहला सवाल जनाब अजीम मियां साहब ने किया था, जिसके जवाब में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे इंटरवीन करने का या सालिस बनने का कहा था नरेंद्र मोदी ने भी, और क्या इसके पीछे आग लगी हुई है वो अजीम मियां ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मियां साहब गुड मॉर्निंग।
जी गुड इवनिंग सर।
मियां साहब क्या हाल है आपका?
मैं ठीक हूँ।
दुनिया की पॉलिटिक्स को किधर लेके चलते चला जा रहे हैं? अमेरिका चाइना पे टैरिफ पे टैरिफ लगाता चला जा रहा है। वो जो जेम्स पावल है उनको खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया था, आज उनके वैरी हुए हुए हैं।
सर ये तो फिर ऐसा ही है कि मोहब्बतें जो है नफरतों में भी बदलती हैं, दोस्तियां दुश्मनियों में भी बदलती हैं। ये तो इंसान, ये जो दुनिया है, दुनिया तो बिल्कुल इसी तरह से चलती है ना। दुनिया का ये निजाम जो है ये इसी तरह से चलता है कि यहाँ दोस्तियां, मफादात की जंग होती है। जब मफादात पूरे होते हैं तो दोस्तियां हो जाती हैं, जब मफादात का टकराव होता है तो दुश्मनियां हो जाती हैं। और ये सिलसिला तो दुनिया में अदन से जारी है और ये रहेगा सर, क्यों नहीं। इसलिए कि ट्रंप साहब जो हैं उनको दूसरा इलेक्शन लड़ना है, उनके अपनी जरूरतें हैं, उनके अपने तकाजे हैं, उनके इलेक्शन के तकाजे हैं, तो उस लिहाज से वो मतलब है कि अपना जो कुछ कहते हैं। अब उन्होंने इमरान खान साहब को भी एक लालाबाई दे दी है कि जी वो ये है कि मैं मेडिएट करने को तैयार हूँ। बात तो यह है कि वो सालसी तो करने को तैयार है, मगर तो इंडिया सालस मानने को तैयार नहीं है। और हमारे वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब इस बात में बहुत खुश हैं कि ट्रंप ने जो है वो बाकायदा इस बात की ऑफर की है कि वो जो है सालसी करेंगे। वो सालसी कैसे करेंगे? एक पाकिस्तान के साथ सालसी अकेले करेंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी करेंगे? तो खाली वो लिप सर्विस दे रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो है वो इस बात को जो है वो मतलब है कि नहीं समझ पा रहा है कि ये जो है अमेरिका चूंकि वर्ल्ड पावर है, उसका इंडिया के साथ अलायंस है, इंडिया के साथ तिजारती मुआहदे हैं, इंडिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ उनका डिफेंस पैक्ट है। इन सब चीजों की मौजूदगी में अगर कोई ये तवक्को करे कि सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की साइड पर बोलेंगे, तो ये इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही कहूंगा कि ये दूर अंदेशी नहीं है, बल्कि मुझे तो इससे ज्यादा सख्त लफ्ज जो है मेरे मुंह में आ रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे हुक्मरान जो है कम से कम इस बात की जो है इस बात की होश करें कि जब इंडिया के साथ अमेरिका का इतना करीबी ताल्लुक है और इंटेलिजेंस शेयरिंग तक है पर उसके मुआहदे हैं, तो फिर अगर जो है सदर ट्रंप सालसी की बात कर रहे हैं तो कोई डिप्लोमेसी का कोई जवाब भी होता है। हमारे यहाँ तो जो डिप्लोमेट्स हैं और हमारे वजीर खारजा तो ऐसे लेटे हुए हैं कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो इस सारे मामले से कैसे डील करें। वो बिल्कुल इस तरह से डील कर रहे हैं कि जैसे कश्मीर का मसला उनके किसी मुरीद का मसला है, उनके मुरीद का मसला नहीं है, ये दुनिया कौम का मसला है। और इनके लिए डिप्लोमेसी जो है एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है माजिद भाई, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये है कि अब आ रहे हैं इमरान खान साहब, अल्लाह करे वो आए, लेकिन यही है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या करना है? आज 70 साल में आपको क्या मिला है अभी तक? आप उन चीजों पे तकिए करते हैं, उन चीजों की सर्विस देते हैं, कौम को उन चीजों की तरफ आप लेके जाते हैं कि जो आज तक जो है बेमाने रही हैं, जिन्होंने अभी तक कश्मीर के मसले को डिलीवर करने के बजाय कॉम्प्लिकेट किया है। अब इसके अंदर जो है क्रिएटिव डिप्लोमेसी की जरूरत है और हमारे यहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी लीडरशिप में इस क्रिएटिव डिप्लोमेसी जो है उसका फुकदान है।
मियाँ साहब बात तो आपने बड़ी अच्छी की, मगर मैं आज बल्कि मैं माजी जमाल साहब से भी बात करी थी प्रोग्राम के दौरान कि देयर वाज अ टाइम कि पाकिस्तान की लीडरशिप वाज अ क्लासिक लीडरशिप। देखिए साहब अमेरिका के जो जैकुलिन कैनेडी एक ही दफ़ा फर्स्ट लेडी पाकिस्तान गई, वो अयूब खान का दौर था, उसके बाद आज तक कोई अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान विजिट करने के लिए तो नहीं गई ना, ठीक है।
आरिफा बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन देखिए उस वक्त अयूब खान जैसा हैंडसम आदमी था जिसपे जैकुलिन कैनेडी फरेफ्ता हो गई थी, अब आपके पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसके ऊपर जो है कोई खातून यहाँ की जो है वो फरेफ्ता हो सके या आपकी खातून यहाँ के किसी लीडर पर फरेफ्ता हो सके। तो बात ये नहीं है, बात असल में ये है आपको हज मुबारक हो, आप अभी हज से होकर आई हैं, तो आपने हज में भी देख लिया है कि वहाँ पर हाजियों के साथ क्या सलूक हुआ है, पाकिस्तानी हाजियों के साथ।
yes.
आप तो अमेरिका और कनाडा से गई होंगी, तो ये बताइए कि जो अपने दीन की जो हज की जरूरियात है वो लीडरशिप पूरी ना कर सके, मैं उससे क्या तवक्को रखूं कि वो जो है डिप्लोमेसी के लिए करे।
मियां साहब, मैं आपका तजुर्बा, आपकी जात, मैं तो आपसे सीखने वालों में से हूँ, आप बहुत बुलंद मुकाम पे हैं, मगर हर चीज पे आप लीडरशिप को कसूरवार नहीं कर सकते, ये अवाम का कसूर है, आम अवाम का कसूर है। यानी आपको पता है कि सऊदी या तो अरबी बोलते हैं या उनको एक उर्दू के चंद एक लफ्ज आते हैं जो कि इंडिया के हजाज के लिए, हजाज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी, बिकॉज हमारे जो आम अवाम हैं वो उनमें लिटरेसी बहुत कम है। मैं आज ही बल्कि बात कर रही थी कि आप क्यों इस गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेम करते हैं। देयर वाज अ टाइम कि पाकिस्तान ने जर्मनी को भी इमदाद दी थी, पाकिस्तान ने जर्मनी को भी फंड किया था, मगर आज पाकिस्तान की आप पीआईए को उठा के देख लें, आप ये गवर्नमेंट तो एक साल से है ना, आप इसको जितना भी बुरा भला कह लें, मगर इससे पहले की गवर्नमेंट्स भी नहीं, पीआईए वाज अ कंपनी जिसने दुनिया की एयरलाइंस को हेल्प किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने इन बिटवीन लीडर्स आए उन्होंने जाति और खुशामदी भर्तियां करके पीआईए का भट्टा गोल किया, स्टील मिल का भट्टा गोल किया, हमारे क्रिकेट की जो टीम्स हैं उनका भट्टा गोल किया, हमारी जो हॉकी की टीम थी उसका भट्टा गोल किया, आप किस किस इदारे की बात करेंगे। ये गवर्नमेंट तो पिछले एक साल से है, मगर अगर आप इससे पिछली हिस्ट्री को भी देख लें तो हमारी सर्टन इदारे तो रोल मॉडल्स थे पूरी दुनिया के लिए, मुख्तलिफ ममालिक के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो इदारे भी सर के बल जमीन पे गिरे हुए हैं, क्योंकि इन बिटवीन आपकी जितनी लीडरशिप आई थी उन्होंने सिफारशी भर्तियां की थी और आम अवाम आए थे। आज सऊदी अरेबिया में अगर सऊदी अरबी के बाद अगर कोई लफ्ज बोलते हैं, सीधा चलो अंदर जाओ बाहर निकलो, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो जायरीन हज हैं वो अपनी इलिटरेसी की वजह से गलत काम करते हैं, फकीर बहुत ज्यादा है, मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, देयर आर रीजंस, आप उसमें हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम तो नहीं कर सकते।
आपकी मैंने
मियाँ साहब नाराज हो गए हो, आवाज बंद हो गई,
आपको नहीं आ रही आवाज।
मैंने कहा मियाँ साहब मैं तो आपसे सीखने वालों में से हूँ, मगर वो कहते हैं एक नालायक बच्चा सवाल भी तो कर सकता है, टेलीफोन तो ना बंद करे।
मैंने कब बंद किया, कहाँ किया भाई बंद, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। बल्कि आपको बताऊँ मैं खाने पे डिनर पे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आपके साथ आपके मतलब के सामने से बात कर रहा हूँ।
मियाँ साहब आई कैन हियर पीछे खाने और चमचे की आवाज आ रही है,
इसलिए कि आप तो तबर्रुक में खजूरें ही लाई होंगी, उसके अलावा क्या लाएंगी आप हमारे लिए। तो हमने कहा खाना खा के तो चले। अच्छा बात ये नहीं है, देखे मैं एक गवर्नमेंट को नहीं कह रहा, एक साल से ये गवर्नमेंट है ठीक है, लेकिन इसका कोई रुख़ मुतय्यन होना चाहिए। मैं पिछली गवर्नमेंट के साथ भी यही बात करता आया हूँ कि हमारे यहाँ चार साल तक नवाज शरीफ साहब ने वजीर खारजा ही नहीं रखा, कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, समझे ना, ये बात नहीं है, ये सब अकुमुलेटिव जमा करते हैं। अवाम को आप कैसे ब्लेम कर सकती हैं, अवाम को तो ये लीडर ऊपर बैठ के फैसले कर जाते हैं। इमरान खान साहब ने अभी जो हॉस्टेजेस अमरीका के हवाले फरमाए हैं, क्या उन्होंने अवाम को एतमाद में लिया है कि वो कौन लोग हैं जिनको जो हॉस्टेजेस उन्होंने अमरीका को देके गए हैं, क्या उन्होंने इस बात पे अवाम को लिया है एतमाद में लिया है कि क्या मतलब है कि अमरीका के साथ क्या अफवाह तफहीम हुई है, किस मामले पे अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है, कौन सा मामला कैसे जेरे।
इट इज अ वेरी वैलिड कंसर्न, क्योंकि मैं जाती तौर पे भी ये कहती हूँ कि इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो वो ट्रांसपेरेंसी की बात ही किया करते होते थे, बट नाउ दिस गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, आई अंडरस्टैंड, बट इन बिटवीन दोज गवर्नमेंट्स, आप चार टेन्योर्स की अगर बात करते हैं तो उन गवर्नमेंट्स ने भी कोई मतलब दे डिडंट डू एनीथिंग गुड फॉर द कंट्री, तो हमारा हर बेहतरीन इदारा जो है वो सर के बल जमीन पे गिरा हुआ है।
आरिफा जो आज हम फसल काट रहे हैं ना
जी,
ये एक इमरान खान की हुकूमत की नहीं, ये नवाज शरीफ की भी हुकूमत, मुशर्रफ की हुकूमत, जियाउल हक की हुकूमत, ये सारी हुकूमतें उसके अंदर अपने अपने हिसाब से शामिल है, मगर मुझे ये कहने की इजाजत दें कि इमरान खान की देखिए डायरेक्शन ही शुरू से गलत है, उनके इर्द गिर्द कौन है, इमरान खान की डायरेक्शन इसलिए गलत है कि उसको ये पता ही नहीं है, यानी आप कश्मीर पर जो मैंने सवाल किया तो उनको पसंद ही नहीं आया और आज वो पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वजीर खारजा से मैंने अलग ऐलान खड़े होकर पाकिस्तान एम्बेसी ने यह कहा कि शाह साहब आज जो बात हुई है इस पे बगले मत बचाइएगा, इसको कैश मत कीजिएगा, पॉलिटिकल इनकैशमेंट मत करें, ये बड़ा मामला सेंसिटिव है। और आप ये देखें कि कुदरत ने ये नहीं है, मैं इस बात का ही दावा करता कि बड़ी बसीरत है, लेकिन ये है कि अपनी लिमिटेड मालूमात के मुताबिक जब मैंने ये कहा, अब आप देखें इन्होंने जाके बगले बजाए कि हम वर्ल्ड कप लेकर आ गए हैं। वर्ल्ड कप किस बात का लेकर आए, कितनी विकेटों से आप ट्रंप को आउट करके गए हैं, आपने कितने रन दिए हैं उसको, किस चीज का मैं कैसे मान लूं। और उसके बाद हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर मोदी जी ने फौज भेज दी है, अब कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज ही का बयान है, न्यूयॉर्क टाइम का इंटरव्यू पढ़ ले, इमरान खान कहते हैं हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमसे कुछ नहीं होता। अब ये मुझे बताइए कि एक ये कैसा लीडर है मेरा कि जो ये कहता है कि आप मुझसे कुछ नहीं होता, हम आप कुछ नहीं कर सकते, क्या मतलब है? यू गॉट टू डील विद द क्राइसिस एंड यू हैव टू फाइंड योर वे विद इन द क्राइसिस।
सही
लेट मुड़ा गए
सही। और मियां साहब ताडे खाने विच असी बहुता मुखल नहीं हुंदे पर साडे कंसर्न बहुत ज्यादा ने। ये जो चाइना के ऊपर टैरिफ्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया के हालात मखदूश नहीं होते चले जा रहे हैं। व्हाट व्हिच डायरेक्शन वी आर गोइंग। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्टर पावेल को खुद अपॉइंट किया था और आज उन्होंने ताइवान के साथ जब अपना मुआहदा किया है और चाइना ने उसके ऊपर अगर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है, अमेरिका ने टैरिफ्स को बढ़ा दिया।
नहीं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है वर्ल्ड पावर रहना चाहता है, वर्ल्ड पावर अपनी जो है रिटेन करना चाहता है और इकोनॉमी में वो अपना कोई कंपटीटर नहीं चाहता, एंड दैट इज वेरी नेचुरल आउटलुक।
डू यू थिंक अमेरिका विल बी सक्सेसफुल इन दिस? डू यू थिंक चाइना पिछले कदम चल जाएगा या ये
देखिए चाइना जो है, चाइना को हम लोग जरा इमोशनल होकर बात करते हैं, रियलिटी ये है चाइना इज बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर, ए पॉलिटिकल पावर, ए रीजनल पावर एंड ए ग्लोबल पावर। एग्जैक्टली। तो लेकिन बात यह है कि चाइना को अभी टाइम चाहिए। चाइना जो है अभी मिलिट्री पावर नहीं है अमेरिका के मुकाबले में। सेकंडली, अमेरिकन ब्लॉक जो है उसके अंदर यूरोप शामिल है, चाइनीज इकोनॉमी जो है बगैर यूरोप के कैसे सर्वाइव करेगी? देख रहे, मार्केट चाहिए ना, तो चाइना की मार्केट जो है वो अपनी जगह है। तो चाइना इज कमिंग स्लोली, चाइना इज टेकिंग अप द चैलेंजेस एंड ट्राइंग टू डील विद द चैलेंजेस। लेकिन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को इस बात का जो है ना इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर इंडिया से वार हुई तो चाइना हमारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। नहीं होगा। चाइना आपको मॉरल सपोर्ट देगा, पॉलिटिकल सपोर्ट देगा, आम एम्युनिशन देगा, लेकिन आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी। और अमेरिका जो है, अमेरिका जंग नहीं होने देगा। वहां पर 54 बिलियन डॉलर जो है, 400 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे, मतलब ये वर्ल्ड पावर जो है किस तरह से जाया होने दे सकती है अगर जंग होगी तो। लिहाजा ये भी है कि जंग भी नहीं होगी, कश्मीरियों के मजालिम भी होंगे और उसके साथ साथ जो है मोदी को रखा भी जाएगा। ये तीन चीजें हैं।
मगर मियां साहब मुझे ये लगता है कि इंडिया को भी अमेरिका कभी भी, देखिए जी 2030 तक इंडिया सुपर पावर बनना चाहता है, यानी इंडिया भी अपने मसल्स दिखा रहा है, अमेरिका कभी इंडिया को सर उठाने नहीं देगा कि वो पाकिस्तान को अपने बीच में जम करे या पाकिस्तान के साथ इस तरह करे। क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया को भी, अगर वो चाइना को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वो इंडिया को भी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
वो बात की बात है, वही वाली बात है कि अगर मेरा घर लुट जाता है और कर्ज के चार घर जो है वो डाके से बच जाते हैं तो मुझे उसका फायदा क्या है? हमें ये देखना है कि इंडिया अमेरिकन कोऑपरेशन लेकर हम पर जो वार कर रहा है हमें वो कैसे सस्टेन करना है। हमें उसको कैसे सर्वाइव करना है और किस तरह उसका सामना करना है।
माजरत के साथ सिर्फ अमेरिका की कोऑपरेशन नहीं है, इंडिया को सऊदी अरेबिया की भी बड़ी कोऑपरेशन है। सऊदी अरेबिया भी बड़ा नेस्टी रोल प्ले कर रहा है। मियां साहब, आपके खाने में मैं ज्यादा रुकावट नहीं बनती, बस एक सवाल मेरा कंसर्न आया है। आपको आपकी आपकी नोटिस में ये न्यूज आई होगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से तकरर करदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो अरकान से हलफ लेने से इनकार कर दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इनका तकरर करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो उनसे हलफ लेने से इनकार कर देते हैं। डिड यू हैव अ चांस टू गो थ्रू दिस न्यूज?
उसकी वजह जो है प्राइमा फेसी ये है कि जब इलेक्शन कमीशन पॉलिटिसाइज होगा, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रलाइज न्यूट्रल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। पहले भी इंडिपेंडेंस नहीं है, हर गवर्नमेंट ने जब कभी इलेक्शन कमीशन बनाया है अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए बनाया है और अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव किए हैं। तो जब इम्पार्शियलिटी का कत्ल हो जाए, समझे, जब इम्पार्शियलिटी की जगह पार्शियल बंदे लगे जाएंगे तो किसी एक का जमीर किसी वक्त जागता है। कभी वो पीसीओ के तहत हलफ लेने से इनकार कर देते हैं तो किसी एक का जमीर जाग गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है वो अगर बंदा का जमीर जाग गया है तो अच्छी बात है, लेकिन वो है कि इसमें बगले बजाने की इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि अगला चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है इसकी आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है ईमानदार और गैर जानबदार होगा।
मुबारक हो मियाँ साहब, सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ शायद रहा हो जाए,
तो इसकी मुबारकबाद मुझे तो देती है, उनके चाहने वालों को दे। नवाज शरीफ अगर रिहा होता है तो उसका मुझसे क्या था, मियाँ वो मियाँ कश्मीरी है, मैं मियाँ पंजाबी हूँ।
मगर आज आपको आज दावत तो उसी सिलसिले में खा रहे हैं।
नहीं जी, ये दावत ये है कि मेरे कुछ बरखुरदार पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, कुछ बरखुरदारियाँ यहाँ जमा है, तो वो तकरीबन ये समझे कोई 20-30 बंदे जो है और बच्चे भी हैं, हर तरह के आपके हज से वापसी की खुशी में ये दावत हुई है।
मेरा तो ख्याल था मियाँ साहब वो मियाँ नवाज शरीफ की रिहाई के ऊपर।
नहीं, ये मियाँ नवाज शरीफ की रिहाई देखिए, ये चीज तो अब यह है कि इमरान खान को भी तैयार रहना चाहिए कि देन ही विल बी आउट ऑफ पावर, ही विल बी बिहाइंड द जेल, ये भी होना है। इसलिए कि जो फसल बोएंगे वही काटेंगे आप, ठीक है, ये बात है कि इसलिए ठीक है करप्शन है, आप प्रूफ लाए, आप कन्विक्स करें, आप जेलों में डाल दें, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अब इस इमरान खान को सीता वाइट केस में कैसे मासूम आप करार देते हैं, लिविंग प्रूफ है।
ओ मियाँ साहब, जवानी में तो आपने भी गलतियां की होंगी, कमाल है मियाँ साहब, पुरानी गल्लां नू छोड़ो, नवीं गल्लां करो।
आरिफा जी, ये नहीं मैं यही कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसूल की बात कर रहा हूँ, वरना ये नहीं है। गलतियां सबसे होती है, जो पकड़ा जाता है वो मुजरिम कहलाता है, जो नहीं पकड़ा जाता, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब कि जो सादिक और अमीन की डेफिनेशन बयान की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पर्सनैलिटीज नो। मैं एहतराम भी करता हूँ इमरान खान साहब का, क्यों नहीं एहतराम करता हूँ, वो मेरे मुल्क के वजीर आजम है, अल्लाह उनको तौफीक दे, विजन दे, लेकिन वो जिन लोगों में घिरे हुए हैं आपके सामने अभी आ जाएगा कि जिन लोगों में वो घिरे हुए हैं, जो उनके कैबिनेट मेंबर हैं, वो कितने मतलब के करप्ट है। मैं अब आपको बताता हूँ कि अभी इन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड को जो है वो ये कहा है कि जी वो यहाँ पर मुजाहरे करें, अपना मुजाहरे का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो बंदा वो है कि जो पीपल्स पार्टी के जमाने में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल में फंस चुका है, तो अब इमरान खान साहब जो है उनको ये जरूरत इस बात की है कि वो ईमानदार लोग लें, बेईमान लोगों को क्यों लेते हैं। सॉरी
सही मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हम ज्यादा खाने में मुखर नहीं होते। ये बताएं आप खाना क्या क्या खा रहे हैं?
खाने में सब हलाल है,
अच्छा
जानते हैं, कबाब है, चिकन है, समझे आप, चावल है, और आप जो कहती है, अब ये है कि वो लोगों के टोरंटो से मुझे खाने आए कि मियाँ साहब हमें क्यों नहीं शरीक किया, वहाँ जमीन साहब भी बैठे हैं, मेरे सारे दोस्त अहबाब वहाँ पर है
जी,
वो सुनेंगे, तो बस आप ये समझ रहे आपके हज से वापसी की खुशी में मैंने जनाबे को खाना खा लिया।
आई लव यू अजीम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, अल्लाह हाफिज। मियाँ साहब से बात कराई क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने दोस्तों के साथ दावत में बैठे हुए थे, इससे लंबी बात हो नहीं पाएगी। तो चलिए साहब, सुनते रहे प्रोग्राम को इसी तरह से। अमेज़न के जंगलात में जो आग है, ये भी एक और आग लगेगी पूरी दुनिया में, क्योंकि जर्मनी فرانس کے صدر جو ہیں وہ بڑے سیخ پائیں اس پہ, اور آئرلینڈ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی سیخ پائے اس پہ. آج ہمارا ٹورنٹو بھی اس میں, بلکہ کینیڈا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. جی ماجد بھائی
جی, اور ایک دو اسپانسرز کی بات بھی کرتا چلوں میں. ہیئر میکس کی بات کرتا چلوں, ہیئر میکس الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن کا کہنا ہے کہ وی ڈیل ان ورلڈز لیڈنگ مینوفیکچررز فار ہیئرنگ ایڈز اینڈ ادر اسسٹو لسننگ ڈیوائسز. اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کے بھی کانوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے سننے میں, تو بھائی آپ ان کے پاس جائیے. ہیئر میکس والوں کا کہنا ہے کہ فری, نو اپلیکیشن, کمپلیٹ ہیئرنگ ٹیسٹ کر کے دیں گے آپ کو. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, 861 جین اسٹریٹ جین اینڈ ایگلنڈن کا ایریا جین پارک پلازا میں, اور دوسری لوکیشن ان کی ایرنڈیل اسٹیشن اینڈ ڈنڈاس کے کارنر پر جہاں ویسٹ ڈیل مال ہے, بس ویسٹ ڈیل مال میں ان کی دوسری لوکیشن ہے. فون نمبر نوٹ کر لیں, 416792 8792 ان کا فون نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ فضل ودود کی بات کر چلوں, فضل ودود انشور پرو کے فضل ودود صاحب, ان کے پاس 27 سال کا ایکسپیرینس تھا, 25 سال انشورنس اینڈ انڈر رائٹنگ ایکسپیرینس ہے. اور اگر آپ نے لائف انشورنس, کریٹیکل انشورنس, ڈسیبلٹی انشورنس یا کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو بھائی ایک دفعہ آپ فضل ودود سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا, 647-286-4285 ان کا فون نمبر ہے. سرونگ دا جی ٹی اے فار مینی ایئرز ریزیڈینشیل یا کمرشل پینٹنگ کی جب بات آتی ہے تو بھائی آپ کو افورڈیبل پرائز پہ پینٹ کر کے دیں گے. انٹیریئر یا ایکسٹیریئر پینٹنگ, ریزیڈینشیل یا کمرشل پینٹنگ, ہاؤس پینٹنگ ہو, وال پیپر ریموول ہو, اسٹکو ریموو کرنا ہو, سیلنگ ریپیئر, ڈرائی وال ریپیئر, کلین ورک کی گارنٹی دیتے ہیں. سینئرز کا ڈسکاؤنٹ ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں سلیم صدیقی صاحب کا. سلیم صدیقی صاحب 647-271-1974 ملیں گے آپ کو, 647-271-1974 پہ آپ کو یہ ملیں گے صاحب. اور صاحب میں ایک دو کمرشل کے اسپاٹس لیتا ہوں, اس کے فوری بعد پروگرام میں واپس آئیں گے.
ڈونٹ وری, ہن کم آن گے والیا ٹریفک لیگل سروس دے مسٹر آر ایس والیا. کیئر لیس ڈرائیونگ, سیٹ بیلٹ, ڈرنک ڈرائیو یا پھر ریڈ لائٹ, ٹریفک دی کسی بھی الگنا وچ پھنس گئے ہو تا مسٹر آر ایس والیا
سارے صدرن اونٹاریو وچ سیواواں لئی,
کارنر آف سٹیلز اینڈ کینیڈی ان برامٹن, نوے بنے پلازا دے وچ,
9054542112,
905-454-2112, آر ایس والیا.
Dr. Padmaja, family and cosmetic dentistry experienced and caring dentist Dr. Padmaja. Daant nikwana ho, crown hemorrhages hain, filling ya phir root canal, tamam insurance plans ko accept karti hain. Aasan weekend ya phir sham ki appointment. Seniors ke liye discount, get the smile you have always dreamed of. In Scarborough, Dr. Padmaja, 416-299-7466, 299-7466, Dr. Padmaja, your dentist.
جی سر کرام, جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک فلم پاکستان کی سپر فلم ہے, سپر اسٹار فلم ہے صاحب یہ, اور مائرہ خان اس کی ہیروئن ہے, اور زبردست فلم ہے, آج کل لگی ہوئی ہے ہمارے سینما میں. اور اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو صاحب آپ نے جانا ہوگا سنیپلیکس کوٹنی پارک پلازا. سنیپلیکس کوٹنی پارک میں یہ لگی ہوئی ہے فلم. اسی فلم کا ایک گیت ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, بے قرار, علی سیتی کی آواز. سماعت فرمائیے, 416-620-1778 ہمارا فون نمبر ہے.
میں اترتے ہی جاتے ہیں بے ہوش کے دائرے بنتے جاتے ہیں, دل کو ہوئی راہوں